So invocation, please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritcha Narayanam Chaiva Narottama Devam Saraswati Vyasam Madhuram Vade Vasya Pradesha Vadesha Nityam Pandita Seva Bhagavato Tumashloke Bhaktir Bhavati Naishtike
जिसके फलस्वरूप उन्हें वरदान के रूप में एक रथ तथा युद्ध की विविध सामग्री प्राप्त की।
And so, they had all the, he had all these paraphernalia and weapons that were granted to him, gave him extraordinary power.
तो जो उन्होंने युद्ध की विविध सामग्री प्राप्त की, उससे उनको अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त हुई युद्ध करने के लिए।
And he attacked the kingdom of heaven headed by Indra.
और स्वर्ग लोक पर उन्होंने धावा बोल दिया, जिसमें इंद्र के ऊपर।
All the demigods were very afraid of him, so they left. They were hiding in the clouds.
तो जितने देवता गण थे वहाँ पर, उनसे भयभीत होकर रण छोड़कर भाग गए।
Their guru had advised them, "Don't try to stay in fight because time is not in your favor."
तो उनके गुरु ने उन्हें सलाह दी थी कि अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए भी आप युद्ध मत कीजिए।
So Maharaj Parikshit wanted to understand how Lord Vamadeva, on the plea of taking 3 paces of land from Bali Maharaj, took everything away from him and arrested him.
तो महाराज परीक्षित ये जानना चाहते थे कि भगवान वामनदेव ने किस प्रकार बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने के बहाने उसे सब कुछ ले लिया और उसे बंदी बना लिया।
Shukadev Goswami responded to his inquiry with the following explanation.
Shukadev Goswami ne jigyasa ka uttar is prakar diya.
In the fight between the demons and the demigods, as described in the 11th chapter of this canto, Bali was defeated and he died in the fight. But by the grace of Shukracharya, his guru, he regained his life.
Jaisa ki skand ke 11th adhyay mein varnan kiya ja chuka hai, asuron tatha devtaon ki ladai mein बलि महाराज पराजित हुए और युद्ध में मारे गए, किंतु शुक्राचार्य की कृपा से वे पुनः जीवित हो गए।
Thus he engaged himself in the service of Shukracharya, his spiritual master.
इस तरह वे अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे।
So the descendants of Bhrigu, being pleased with him, engaged him in the Vishwajna. This is a powerful jagna that gave him the special weapons and powers to fight the devas.
Bhrigu Vanshi un par prasan ho gaye aur unhone unhe Vishwajit yagya mein laga diya. Isi yagya ko sampann karne ke baad unhe ek rath prapt hua aur yuddh mein ki vivid samagri prapt hui.
When this jagna was performed from the fire of the jagna came a chariot, horses, a flag, a bow, armor, and two quivers of arrows.
जब ये यज्ञ संपन्न हुआ, तो उस यज्ञ अग्नि से एक रथ, घोड़े, एक पताका, एक धनुष, कवच तथा बाणों के दो तरकस प्रकट हुए।
Maharaj Prahlad, Bali Maharaj's grandfather, gave Bali an eternal crown of flowers.
बलि महाराज के पितामह महाराज प्रहलाद ने उन्हें फूलों की एक शाश्वत माला दी।
So as you hear this narration, keep in mind that Bali Maharaj is the grandson of Prahlad Maharaj. Because this is the demon dynasty, so Prahlad Maharaj, he took the throne after Lord Ashwagandhav killed Ranakasipu. So then Prahlad Maharaj became king of the demons. He was no small player, you know. And he had to carry out his duties as the king of the demons.
तो बलि महाराज जैसे हम जानते हैं प्रहलाद महाराज के पोते हैं और नरसिंह देव ने जब हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया तो उनके पुत्र प्रहलाद महाराज को असुरों का राजा बनाया गया तो कोई साधारण पुरुष नहीं थे उन्होंने असुरों के राजा के रूप में राज किया था
So although Bali Maharaj was playing the role of a demon, nevertheless Prahlad Maharaj had a heart connection with him, so to speak, because his grandson.
तो हालांकि बलि महाराज एक असुर की भूमिका निभा रहे हैं फिर भी प्रहलाद महाराज का उनके साथ हृदय का संबंध था क्यों क्योंकि उनके पोते थे
शुक्राचार्य gave him a conch shell
और शुक्राचार्य ने उन्हें एक शंख दिया
बलि महाराज after offering obeisances to Prahlad the brahmanas and his spiritual master Shukracharya equipped himself to fight with Indra and went to Indrapuri with his soldiers
तब प्रहलाद ब्राह्मणों एवं अपने गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार करके उन्होंने इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयारी की और वे अपने सैनिकों सहित इंद्रपुरी गए
Well, this is more or less an eternal pastime, although it takes place in the material universes.
तो ये जो भौतिक जगत के अंदर ये एक ऐसी शाश्वत लीला है जो ये होती रहती है
In other words, there are always devas and there are always demons. And there is always a fight.
तो हमेशा असुर होते हैं और देवतागण होते हैं और हमेशा उनके बीच में युद्ध होता है।
And the demons by nature are envious, so they envious of the opulence of Indra, so they attack and they want to lord it over.
तो स्वभाव से असुरगण ईर्ष्या से भरे होते हैं और इंद्र के जो ऐश्वर्य देखकर उन्हें ईर्ष्या हुई और इसलिए उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया।
At least they were fighting over worthwhile assets, but nowadays the wars are over oil, like in Iraq, you know, the United States, you know, concocted excuse of, you know, weapons of mass destruction. Really what they wanted to do was conquer the oil fields so that then President Bush, an oil man, could for free give the oil rights to his buddies in the oil industry. That's how American corruption works. It's worse than Indian corruption.
तो कम से कम जो असुरों और देवतागण में युद्ध होता है वो एक ऐश्वर्य के लिए होता है जिसके लिए युद्ध करना जायज है परंतु आज के समय में हम देखते हैं संसार में युद्ध किस पर होता है तेल के ऊपर जैसे कि इराक में अमेरिका ने युद्ध बोल दिया तो बहुत करप्शन है और वो युद्ध क्यों करना चाहते थे ताकि जितने सारे तेल के कुएं हैं उनको हड़प ले और अपने जो पार्टनर्स हैं उनको वो दे
So to give free rights to the oil, to his oil buddies in the oil industry, Mr. Bush happily sacrificed the lives of about 20,000 American youth without blinking. This is demon. But what's the difference? You know, it's the same mentality, only in modern times it's pathetic.
The American President George Bush then जो तेल है उसकी सप्लाई, उसके जो फ्री राइट्स अपने साथियों को देने के लिए बिना पलक झपकाए हुए अमेरिका 20,000 सैनिकों को मरवा दिया।
So, otherwise these fights are always being cooked up for different reasons, but in modern times, the spoils of war are nothing in comparison to here. You see that, and the weapons, modern weapons, the modern Air Force and armies would love to have the weapons that were available to, to the demons and the devas. They would love to have weapons like that, but not available because they're too sinful and too small in Kali Yuga.
तो आज के समय में जो हथियार यूज होते हैं युद्ध के अंदर और जो देवतागण और असुर के युद्ध के समय जो हथियार यूज होते थे इनमें कोई तुलना नहीं है। ये तो बहुत ही छोटे मोटे हथियार है। असुर गण और देवतागण के पास जो हथियार होते थे वो तो इससे भी बड़े होते
थे। So there's no good reason why Bhargava should have lusted over conquering Indra. There's no good reason. He had his own up in the kingdom in the lower planets. There was no good reason, but it's the nature of envy that they just want to increase their opulence and they're ready to fight for it. So what is the difference of mentality? The only difference of mentality is they were fighting over something worthwhile, massive. You know, we can't count in modern money how much the assets of the heavenly planets are worth.
तो कोई ऐसा अच्छा कारण नहीं था बलि महाराज के पास आक्रमण करने के लिए। उनका अपना एक राज्य था जहां वो राज कर रहे थे, परंतु जो स्वर्गलोक का ऐश्वर्य इतना ज्यादा है भौतिक संसार की करेंसी के अंदर तो हम इसकी गणना भी नहीं कर सकते। और उस ऐश्वर्य को देखकर उससे लालच के उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस पर आक्रमण बोल
दिया। The gems, sapphires, rubies, diamonds, gold, you know, there's nothing to compare in modern Kali Yuga.
तो जो आज के समय में युद्ध होता है उसमें जितनी हानि होती है उसको आप पैसों से अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ 100 करोड़ में फिगर आती है कि इतने का नुकसान हुआ। परंतु जो देवता गण और असुर गण के बीच में युद्ध हुआ था और देवता गण का जो ऐश्वर्य है उसको आंकना भी बहुत मुश्किल है। सफायर, जेम्स, डायमंड, ऐसे ऐसे तो वहाँ पे बहुत ही कीमती आभूषण रत्न है।
Right, Devama? Yes. Can you compare the modern assets of, you know, paper money and cement buildings, brick and cement buildings and paper money? Can you compare that to the opulence of the heavenly planets?
So, Maharaj, Devatma Narayan Guru se pooch rahe hain ki aaj ke samay jo currency hai kagaz ki aur jo imarate hain mitti patthar ki bani hui, iski koi tulna ho sakti hai jo swarg lok mein jo aishwarya hai jahan alag alag ratna hai?
Devatma is shaking his head. He doesn't believe there's any. But they say it's mythology. It's not mythology. What's mythology is that this is the most advanced civilization in the history of the universe. That's the mythology. Not that, you know, heavenly planets are not mythology.
तो कुछ लोग कहते हैं कि जो स्वर्ग है ये तो कल्पना का विषय है, वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं होती। और उन्हें लगता है जो आज की सभ्यता है ये सबसे एडवांस, सबसे प्रगतिशील सभ्यता है। तो उल्टा है, उनकी ये धारणा कि हम बहुत प्रगतिशील हैं ये कल्पना है और स्वर्ग वास्तव में होता है।
So when Indra saw Bali Maharaj's prowess, you know, prowess means opulence, in this case the opulence and power of his army and weapons.
तो जब बलि महाराज ने ऐश्वर्य देखा स्वर्ग लोक का,
So he went to his own spiritual master Brihaspati and told him about Bali's strength and inquired about his duty. So I mean, Indra, we know, is very puffed up, but sometimes he inquires from his guru when he's in the right mood.
Bali Maharaj ke shaurya ko dekhkar, Indra apne guru Brihaspati ke paas gaya aur unse Bali ke parakram ki charcha ki.
So Brihaspati informed the demigods that because Bali had been endowed with extraordinary power by the Brahmanas, the demigods could not fight with him.
और उनसे पूछा कि वे क्या करें? बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मणों से अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई थी, अतः देवता उससे युद्ध नहीं कर सकते।
Their only hope was to gain the favor of the Supreme Personality of Godhead.
उनकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करने में है।
Indeed, there was no alternative.
दरअसल कहीं कोई विकल्प था भी नहीं।
So this is what Lord Vishnu does. He arranges by his will that his devotees should be attacked.
तो ये भगवान विष्णु करते हैं। अपनी इच्छा से वो ऐसे प्रबंध करते हैं कि जो उनके भक्त हैं सदा उनसे आसक्त रहें।
You may say, why? You know, Lord Vishnu is the protector Bhaktivatsala. He's the protector of his devotees. Why would he arrange by his will that his devotees should be attacked? Why?
तो आप कुछ में से कोई प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा क्यों? भगवान विष्णु तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो ऐसा प्रबंध क्यों करेंगे कि उनके भक्त के ऊपर कोई आक्रमण करे?
How many of you know the answer?
आप में से किसी को उत्तर पता है इस प्रश्न का?
Yes, Prabhu. What's he saying?
Lovely.
In the helpless mood, devotee will surrender to Krishna and he'll become more attached to him.
Yes. So say it in Hindi.
So Prabhuji ne bataya ki aise jab un par aisa akraman honge to asahay avastha mein jab Bhagwan ko sharanagat honge to Bhagwan se unki aasakti kai guna badh jayegi.
Point is that the devas get insanely puffed up with their opulence. Their unlimited sex, you know, any one of the kshatriyas can have sex with unlimited numbers of beautiful apsaras. It's within kshatriya dharma to have all kinds of sex, unrestricted sex. Not our dharma. But kshatriya dharma, somebody wants unrestricted sex, you can't just grow a mustache. Call yourself a kshatriya.
तो जो देवतागण हैं बहुत बार छोटे अहंकार जब उनका बहुत बढ़ जाता है उनके पास इतना ऐश्वर्य है छोटा अहंकार बढ़ जाता है और वह बिना किसी सीमा के इंद्र तृप्ति में लीन हो जाते हैं जैसा देखते हैं क्षत्रिय हैं एक एक जो क्षत्रिय राजा है कई कई स्त्रियों के साथ उनका यौन संबंध होता है
There were some asses masquerading as initiates of Prabhupada.
There were some?
You heard me. Asses. There were some unscrupulous men, not many, but at least one man had a fantasy that he was a kshatriya. He thought he was a kshatriya because he had a gun for mat and maybe he needed, knew how to use a knife or something. His fantasy was he was a warrior, a kshatriya. He thought he was a kshatriya.
तो कोई भी मूछें उगा के क्षत्रिय नहीं बन जाता। तो श्रीला प्रभुपाद के समय भी एक ऐसे व्यक्ति को धारणा थी कि वह क्षत्रिय है उसका जो खून है क्षत्रियों का है
Since he thought that he was a kshatriya but actually was in tamagun it's complete rubbish and I don't think he lasted very long after this incident
तो उस समय व्यक्ति को लगा कि वह क्षत्रिय है परंतु महाराज बता रहे हैं पूरा तमोगुण से भरा हुआ था
Since his fantasy was that he was a warrior He wanted to know from Prabhupada if he could eat meat since he thought he was a kshatriya. Just see what...
Uski kalpana thi
nonsense mentality. You know, demoniac mentality is what it was. So puffed up with demoniac mentality and tamagun. He was thinking, I'll take this as an excuse to eat meat because actually you see I'm a warrior. You're not a warrior, you're a nonsense, you know.
So uski kalpana thi ki vah ek bahut bada yodha hai. और योद्धा होने के भांति उसने श्रीला प्रभुपाद से पूछा कि वो मांसाहार कर सकता है तो आप जरा सोच के देखिए ये बिल्कुल नॉनसेंस है इसका कोई धारणा नहीं है और वो इतना झूठे अहंकार से भरा हुआ था और इसको कहते हैं असुर असुर मानसिकता किसी ना किसी प्रकार से वो मांसाहार करना चाहता
Instead of calling him a fool or an ass and chastising him, Prabhupada was very polite.
उसको मूर्ख गधा ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के बजाय प्रभुपाद बहुत ही विनम्र थे
He politely said, first of all, you take a knife and wrestle barehanded with a tiger, then you can eat meat. Well, Kshatriyas, they could do like that, you know. They could wrestle with a tiger with just having a knife, you know, and a fair match between a qualified Kshatriya and a tiger. So he said, first of all, you fight barehanded with a tiger, and then and a knife. And so if you can do that, then you can eat meat.
तो प्रभुपाद ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया कि पहले आप एक चाकू लो और उस सिर्फ चाकू के साथ एक सिंह के साथ युद्ध करो, एक शेर के साथ, और अगर तुम उस, क्योंकि जो क्षत्रिय हैं वो ऐसा कर सकते हैं, तो उनके बीच का जो युद्ध है एक समान स्तर का युद्ध होता है, तो आप एक चाकू के साथ जाओ, शेर के साथ युद्ध करो, अगर आप जीत गए तो आप खा सकते हो.
So we see that devotees get puffed up by opulence. This is practical. We see that in our own society, sometimes devotees that have money get ridiculously puffed up, you know.
तो हम देखते हैं कभी कभार भक्त जो है ऐश्वर्य प्राप्त करने के कारण उनका झूठा अहंकार बहुत बढ़ जाता है, ये चीज हम कभी कभार इस्कॉन संस्था में भी देखते हैं.
So Brihaspati advised the demigods to leave the heavenly planets and keep themselves somewhere invisible, which means when this would happen, they go hide in the clouds.
तो ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वे स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं अदृश्य हो जाएं.
So the demigods followed his orders, and Bali Maharaj, along with his associates, gained the entire kingdom Indra. I mean, there wasn't even a fight, you know, because the Guru Maharaj said it's no use fighting because you're just going to get butchered. So just forget it. They've got you outgunned, we say in America.
तो देवताओं ने उनकी बात मान ली और बलि महाराज तथा उनके संगियों ने सारे इंद्रलोक को हत्या लिया. तो उनके बीच में कोई युद्ध भी नहीं हुआ क्योंकि उनके गुरु महाराज ने सलाह दी कि ये युद्ध के लिए सही समय नहीं है, तो ऐसे ही छोड़कर चले गए.
The descendants of Bhrigu Muni, meaning the Brahmanas who had done the jagnas to empower him like this, in being affectionate to their disciple Bali Maharaj, engaged him in performing 100 Ashwamedha jagnas.
तो भृगु मुनि के वंशजों ने भृगु के शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत वत्सल होने के कारण उन्हें 100 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया.
In this way, Bali enjoyed the opulences of the heavenly planets.
और इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य का भोग किया.
So we begin the chapter. Text 1 and 2.
तो हम अब इस अध्याय की शुरुआत करेंगे श्लोक संख्या 1 और 2.
I'll chant a little bit and then we'll move towards the 28th verse.
तो मैं कुछ इन श्लोक को उच्चारण करूंगा, उसके बाद हम 28वें श्लोक पर जाएंगे.
श्री राजा उवाच बल पादा चरण भूमे कश्वर दारेर अयच्छता भूतवेश्वरा कृपानावा Maharaj Parikshit inquired, the Supreme Personality of Godhead is the proprietor of everything. Why did he beg 3 paces of land from Bali Maharaj like a poor man? And when he got the gift for which he had begged, why did he nonetheless arrest Bali Maharaj?
Maharaj Parikshit ne pucha, Bhagwan pratek vastu ke swami hai. तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी, और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? मैं इन विरोधाभासों के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं.
I am very much anxious to know the mystery of these contradictions.
मैं इन विरोधाभासों के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं.
So this is the perfection being curious, wanting to understand about the pastimes of the Lord, because we're talking about Vamana Dev here, who is the incarnation of Lord Vishnu.
तो ये जिज्ञासा करने की पूर्णता है कि जब आपकी जिज्ञासा भगवान को समझने के लिए हो और उनके कार्यकलापों को.
Text 3. Shukadeva Goswami said, O King, when Bali Maharaj lost all his opulence and died in the fight, Shukacharya descended the Brijamuni, brought him back to life.
श्लोक संख्या 3। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलि का सारा ऐश्वर्य छीन गया और वह युद्ध में मारे गए, तो भृगु मुनि के एक वंशज शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया।
Because of this, the great soul Bali Maharaj became a disciple of Shukracharya and began to serve him with great faith, offering everything he had.
इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे।
Shukracharya was the head Brahmin advisor to the emperor of the universe, pretty, we say in America, cushy. You know, pretty soft position, another English word is coveted. Do you know the word coveted? It means a position that anybody would go for, to be the confidential advisor on a salary, of course, of the emperor of the entire universe. I mean, that means, you know, big salary.
तो जो पूरे के पूरे संसार के राजा बनने वाले थे, उनके सलाहकार होना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी पदवी थी।
Text number 4. The Brahmana descendants of Bhrigu Muni were very pleased with Bali Maharaj, who desired to conquer the kingdom of Indra. Therefore, after purifying him and properly bathing him according to regulated principles, they engaged him in forming the yajna known as Vishvajit.
श्लोक संख्या 4। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए, जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने उन्हें अनुष्ठान पूर्वक शुद्ध करके तथा स्नान कराकर विश्वजीत नामक यज्ञ करने में लगा दिया।
Text 5. When ghee was offered in the fire of sacrifice, there appeared from the fire a celestial chariot covered with gold and silk.
श्लोक संख्या 5। जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई, तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक दैवी रथ प्रकट हुआ, साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़े तथा सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा प्रकट हुए।
There also appeared yellow horses like those of Indra and a flag marked with a lion.
तो इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़े तथा सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा प्रकट हुए।
Text number 6. A gilded bow. Gilded means covered with some kind of expensive covering, like a piece of wood, or let's say a deity gilded with gold. You know, gilded means covered, a covering. A gilded bow, or a decorated bow, two quivers of infallible arrows. Infallible arrows means they can't go wrong.
तो उन्हें एक सुनहरा धनुष, अचूत बाणों से युक्त दो तरकस, अचूत बाण मतलब ऐसा बाण जो कभी भी निशाने से चुकेगा नहीं।
And celestial arrows, no, celestial armor also appeared.
और एक दिव्य कवच भी प्रकट हुए।
Bali Maharaj's grandfather, Prahlad Maharaj, offered Bali a garland of flowers that would never fade, and Shukracharya gave him a conch shell.
Bali Maharaj ke pitama, Prahlad Maharaj ne unhe kabhi na murjhane wali phoolon ki mala di, aur Shukracharya ne ek shankh pradan kiya.
When Bali Maharaj had thus performed the special ritualistic ceremony advised by the Brahmanas and had received by their grace the equipment for fighting, he circumambulated the Brahmanas and offered them obeisances.
ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त कर चुकने के बाद महाराज बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया।
He also saluted Prahlad Maharaj and offered obeisances to him.
उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया।
So this is true civilization. This is culture. We see the honoring of the Brahmanas. This is real culture. This is real civilization.
यह असली सभ्यता और संस्कृति है, जहाँ पर हम देखते हैं ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है।
Texts 8 and 9. Then, after getting on the chariot given by Shukracharya, Pali Maharaj decorated with a nice garland, put protective armor on his body, equipped himself with a bow, and took up a sword and a quiver of arrows.
तब शुक्राचार्य द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण किया, अपने को बाणों से लैस किया, एक तलवार तथा तोड़ी लिया।
When he sat down on the seat of the chariot, his arms decorated with golden bangles and his ears with sapphire earrings, he shone like a worshipable fire.
जब वे रथ में आसन ग्रहण कर चुके तो सुनहरे कड़ों से विभूषित बाहों तथा मरकट मणि के कुंडलों से विभूषित कानों सहित पूजनीय अग्नि की तरह चमक रहे थे।
See, we could jump to verse number 28, but then we'd miss all this nectar. Well, we keep going, and then if there's no time left, then there's more nectar for next time. Text 10 and 11. When he assembled with his own soldiers and the demon chiefs, who were equal to him in strength, opulence, and beauty, they appeared as if they would swallow the sky and burn all directions with their vision.
Shlok Sankhya 10 aur 11. Jab vah apne sainikon tatha asur nayakon samet ekatra hue, जो बल ऐश्वर्य एवं सुंदरता में उन्हीं के समान थे तो ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को निगल जाएंगे और अपनी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला देंगे।
After thus gathering the demoniac soldiers, Pali Maharaj departed for the opulent capital of Indra.
इस तरह असुर सैनिकों को एकत्रित करके बलि महाराज ने इंद्र की ऐश्वर्यमय राजधानी के लिए कूच किया।
Indeed, he seemed to make the entire surface of the world tremble.
दरअसल ऐसा लग रहा था मानो वे सारे जगत को कंपायमान कर देंगे।
King Indra's city was full of pleasing orchards and gardens, such as the Nandana Garden.
राजा इंद्र की पूरी सुहावने बाग बगीचों से यथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी।
Because of the weight of the flowers, leaves, and fruit, the branches of the eternally existing trees were bending down.
फूलों, पत्तियों तथा फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं।
So this is not describing trees of the spiritual world. The word eternally is used here, but it's not describing trees from the spiritual world.
तो यहाँ पर हालांकि शब्द आया शाश्वत, परंतु यह आध्यात्मिक जगत के वृक्षों की वर्णन नहीं हो रहा, इस स्वर्गलोक के वृक्षों का वर्णन है।
So the word is, the Sanskrit is amara jirmai, with eternal trees. So we should understand that it doesn't mean that the trees would necessarily survive at the time of destruction of the universe. Rather that the species is eternal and they will always appear in the universes, you see. So in that sense they're eternal. But they're not spiritual trees, like a desire tree.
तो यहाँ पर श्लोक में शब्द आया है अमर द्रुमय, अमर वृक्षों से। तो यहाँ पर अमर शब्द का अर्थ है कि जो उनकी योनि है वो शाश्वत है और हर बार ये योनि प्रकट होती है, परंतु ये कल्प वृक्ष नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब ब्रह्मांड का संहार होता है तो ये इन वृक्षों का संहार नहीं होता, नहीं, उनका भी संहार होता है।
The gardens were visited by pairs of chirping birds and singing bees. The entire atmosphere was celestial.
उन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजाती मधुमक्खियां आती जाती थी। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य था।
So, gentlemen, this is why you should not go to the heavenly planets. The next portion.
Why we should not?
The next verse, yeah.
अगला श्लोक है जिसमें पता चलता है कि हमें स्वर्गलोक क्यों नहीं जाना चाहिए।
Beautiful women protected by the demigods sported in the gardens which had lotus ponds full of swans, cranes, chakravakas and ducks.
उद्यानों में देवताओं द्वारा रक्षित सुंदर स्त्रियां खेलती थीं, जिनके कमल ताल हंसों, सारसों, चक्रवाकों तथा बतकों से भरे हुए थे।
So gentlemen, if you want to go to the heavenly planets, you can stick your hand in a bead bag. There's lots of beautiful women up there.
तो जेंटलमैन, अगर आप सब लोग जाना चाहते हैं फिर भी आप अपना हाथ बीट बैग में डाल सकते हैं.
You can mumble, you know, Nama Basa, Nama Parad, and your heart can be full of material desires and sex desire and all that, but still, I'll be nicely devoted to Krishna, but Sakama devotee. Sakama means full of material desire, but devotee. Like the devas, they are full of material desire, but they're devotees.
हो सकता है आपके हृदय में सारी भौतिक इच्छाएं भरी हो और नाम अपराध या नाम अभास आप जप करके स्वर्गलोक भी पहुंच सकते हैं, परंतु उनको कहा जाता है सकाम भक्त, ऐसे भक्त जिनमें भौतिक कामनाओं से भरे हुए हैं, जैसे कि देवतागण, ये भी भक्त हैं, परंतु इनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी होती हैं.
So followers of Chaitanya Mahaprabhu who are chanting Hare Krishna and taking shelter at lotus feet of the great saints in our movement, then very easily can go to the heavenly planets. Whereas others are standing on one leg and doing severe, you know, pranayama for 10,000 years of the devas in order to get there and so forth. But, devotees in our movement can accidentally get there just by mumbling Nama Bas, Nama Parad, and eating Krishna Prasad.
तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और इस आंदोलन में बड़े बड़े महान संतों की शरण प्राप्त की है, ये तो बहुत आसानी से स्वर्गलोक जा सकते हैं. पर ऐसी तुलना में जो बाहर अपने लोग एक टांग पर खड़े होकर 10,000 सालों तक प्राणायाम करके जाने का प्रयास कर रहे हैं,
so be careful what you desire.
तो इसलिए जप करते समय आप क्या इच्छा कर रहे हैं इससे सावधान होना चाहिए.
Right, Devama? In this body, Devama is very skinny and not very attractive to the opposite sex. That's good for Brahmachari life.
So, in this body, Devama is very skinny.
But if he had a material desire, he doesn't. But so if he had a material desire, if he wanted to actually sport with beautiful young girls, and then in his next life, he would have this celestial body described here, very buff, like here, people go to the gyms and work out. But in the heavenly planets, you'd be born with a body like that, of beautiful jewels and gems and very strong strength of 10,000 elements without having to go to the gym.
तो हो सकता है अभी शरीर बहुत पतला हो, परंतु अगर भौतिक इच्छाओं से पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो अगला जन्म जब जिनका भी स्वर्गलोक में होता है उनकी जन्मजात से ही ऐसा शरीर होता है जैसे कि यहाँ पर बहुत आप कल्पना कर सकते हैं जिन जाके बनता हो, तो उनका शरीर बहुत सुडोल होता है, उस पर विभिन्न प्रकार के रत्न और आभूषण लगे होते हैं.
So you have to be careful what you desire.
तो इसलिए आप किस प्रकार की आप क्या इच्छा कर रहे हैं?
At one point, Prabhupada said, most of my disciples are going to the heavenly planets.
एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा था, मेरे अधिकतर शिष्य स्वर्गलोक जा रहे हैं.
So it's not a joke, you just mumble Nama Parad and Nama Bas and do some seva and see some deities, and the Sukriti for that is so powerful beyond imagination, better than all the austerities performed by gyanis and yogis. These simple practices and accidentally go heavenly planets. If you have the desire in your heart, be careful.
तो कुछ नाम अपराध जप करके, कुछ इधर उधर सेवा करके, अश्वग्रहों के दर्शन प्राप्त करके, तो जो सुकृति प्राप्त होती है वो इतनी शक्तिशाली है कि आपको तो स्वर्गलोक तक तो आसानी से लेके जा सकती है.
Pretty nice place. Indra's city is pretty nice, Not like Delhi, no air pollution, no stinky river. we're blessed with a stinky river, which is the most polluted river in all of India. It's only a few meters away from here, and it stinks like hell on many days,
तो जो इंद्र का जो निवास स्थान है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर इसका वर्णन है. कम से कम दिल्ली से तो बहुत अच्छा है, दिल्ली में जिस प्रकार का एयर पॉल्यूशन है और पूरे 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 के पूरे भारत की जो सबसे प्रदूषित नदी है हमारे मंदिर के कुछ ही मीटर दूर है.
But now text number 14 describes that Indra's city as compared to this tamasic and the tamasic city of Delhi. You know, Indra's city, text 14 says, was surrounded by trenches full of Ganges water. Hari Bol!
तो जो दिल्ली है वो तो पूरा का पूरा तमोगुण से भरा हुआ है, परंतु आप यहाँ देखें इंद्र का निवास स्थान का क्या वर्णन है, वे पूरी आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई थी, तो उनके चारों ओर गंगा जल था।
So this is an expansion, special expansion of Ganga Devi known as Akasha Ganga.
तो वहाँ पर गंगा देवी आकाश गंगा नाम से विख्यात है।
And the city had a high wall which was the color of fire, and on this wall were parapets for fighting. Parapets means towers.
तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने थे।
15. The doors were made of solid gold plates, and the gates were of excellent marble.
15. उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे और फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के थे।
These were linked by various public roads.
ये सभी विभिन्न जनमार्गों से जुड़े थे।
The entire city had been constructed by Vishwakarma.
पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था।
Vishwakarma is the architect of the demigods.
देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं वो विश्वकर्मा हैं।
He is also the architect and engineer who constructed the city of Dwarka for Krishna.
तो भगवान कृष्ण की जो द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था।
I don't know anybody here that's a structural engineer or architect.
आप में से यहाँ कोई structural engineer या architect हैं?
There are some devotee architects. I have a friend who is a devotee architect, young man, devotee architect and architectural designer.
तो कुछ भक्त हैं जो architect हैं, महाराज करम के एक मित्र हैं।
He can't design any city like this. Sorry, folks.
But तो इस प्रकार की नगरी का निर्माण नहीं कर सकते।
Text 16. The city was full of courtyards, wide roads, assembly houses, and not less than 100 million. Wow, get this. Not less than 100 million airplanes.
श्लोक संख्या 16. ये नगरी आंगनों, चौमार्गों, सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी।
So here in Delhi we have Indira Gandhi International Airport, you know, and it's award-winning. It's supposed to be the best airport in the world, you know. It is. That's what they say. Award-winning. Well, you're not a flyer, so you don't know. Come on, it's award-winning. The signs are right there. This is the top award-winning airport in the world.
The Delhi mein Indira
Gandhi. That just shows you don't know everything, you know. you're not modern enough, you know. You're not modern enough. You don't know this. I'm a flyer, I know.
तो जो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको अवार्ड मिला हुआ है कि विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। तो प्रभु जी गर्दन हिला रहे थे, तो महाराज ने कहा इससे साबित होता है कि आप मॉडर्न नहीं है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है महाराज, परंतु यात्रा करते हैं तो वहां पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि
How many of you know it's the number one?
आप में से कितनों को पता है कि वो नंबर वन एयरपोर्ट है?
It is. It's just that you're not cosmopolitan enough. You must be a village boy.
तो इसका मतलब शहर में नहीं रहते हैं आप, एक गांव वासी हैं।
But here we see, sorry folks, you know, there's no airports on this planet, no matter how good the architects are, but there's nothing, there's no airport with that can have the capacity for millions of airplanes. That's what it says here. Millions of airplanes.
इस संसार में कोई भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां पर 10 करोड़ विमान रखे जा सकें, जैसा कि यहां पर वर्णन है स्वर्ग लोक का।
No, more than millions, not less than 100 million airplanes.
10 करोड़ विमान।
You know, and in this world, you know, rich people, it's a big deal if they have a Mercedes. But even the city of Delhi, there aren't that many Mercedes-Benz, you know. Even in Delhi, you know, only there's a handful here and there in the most opulent sectors.
तो कोई भी बहुत धनवान व्यक्ति होता है और बड़ी गाड़ी रखना चाहता है जैसे मर्सिडीज दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मर्सिडीज हैं कुछ इधर उधर लोगों के पास है
In the city of Delhi, there's a small handful of people who own private airplanes, you know, own a private airplane, you know, capable of crashing, capable of, you know, I mean, a junky little airplane, you know, maybe even a private jet. There's some people in the city of Delhi that own a private jet, you know.
और ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत ही गिनी चुनी है जिनके पास प्राइवेट एयरप्लेन हो ऐसा एयरप्लेन वो क्रैश हो सकता है छोटा बहुत ही लेवल के चलता है इतना
But on heavenly planets, the airplanes are swan planes. No toxic fuel emissions.
परंतु जो स्वर्ग लोक में विमान होते हैं वो स्वैन प्लेन्स होते हैं हंस के विमान होते हैं तो उनमें से किसी भी प्रकार का ऐसा पदार्थ नहीं निकलता जिससे प्रदूषण
हो Forget Mercedes-Benz. Everybody has their private swan plane. 100 billion private swan planes. That's just puts to shame mundane opulence of the so-called most advanced civilization.
तो वहाँ के जो हंस विमान हैं उनकी तुलना में जो आज के तथा कथित प्रगतिशील सभ्यता के बड़े से बड़े ऐश्वर्य हैं उनको भी शर्म आ जाएगी
The crossroads were made of pearl, and there were sitting places made of diamond and coral.
चौराहे मोती से बने थे और आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने थे.
Text 17. Everlasting, beautiful, and youthful women who were dressed with clean garments glittered in the city like fires with flames.
उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी
So, Prabhupada gives the purport by Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur.
उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे तो इस श्लोक का श्रील प्रभुपाद तात्पर्य देते हैं
Don't blame me, I'm reading the Bhagavatam.
तो मुझे आप दोष पर ठहराइए मैं भागवतम में से पढ़ रहा हूँ।
That's why in Calcutta, you know, I was at a sangha, 800 congregational members, Namahatas, you know, and 800, and I was addressing from the stage, and somehow I suddenly got inspired to sell sets of Srimad Bhagavatams.
तो मैं एक बार कलकत्ता में 800 लोगों का समूह है वहाँ पे नामहट प्रोग्राम था उनको संबोधित कर रहा था तो स्टेज से मेरे को अचानक प्रेरणा आई श्रीमद् भागवतम के सेट्स बांटने की
So I said, if you want, you know, you're reading, I just told the truth, you're reading junky novels about, you know, sex life and sex life of unimportant people and fights and murders and all this rubbish. You're reading these things. Why not read about beautiful women on the heavenly planets? I said that from the stage, you know.
तो मैंने स्टेज से बताया कि आप सब एक ऐसे लिटरेचर को पढ़ रहे हैं जिसमें यौन जीवन का वर्णन है साधारण लोगों के बीच में तो आप ऐसा ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते जहाँ पे स्वर्ग लोग के यौन जीवन के बारे में वर्णन दिया है
Why not find out about the sex life of Lord Shiva? Your local Hindu priest can't tell you that. श्रीमद् भागवतम क्या है?
भगवान शिव का यौन जीवन का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, तो वो कोई तथाकथित पंडित भी नहीं बता सकता।
If you want to find out where, you're gonna have to read Srimad Bhagavatam. I'm not gonna tell you.
अगर आप पूछना चाहते हैं कहाँ पर भागवतम है, वो मैं नहीं बताऊँगा। इसके लिए आपको भागवतम पढ़नी पड़ेगी।
If you want to read about sex life, why not read about sex life of the great kings? I said.
अगर आप वास्तव में सेक्स लाइफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बड़े बड़े राजाओं की सेक्स लाइफ के बारे में क्यों ना पढ़ें?
Why just rubbish common people? What is this? Whores? You know, I mean, come on, you know, why not high class? Why not the sex life of kings?
साधारण मूर्ख तमोगुण से भरे हुए लोगों की सेक्स लाइफ पढ़ के क्या फायदा? इस महान महान राजा की सेक्स लाइफ के बारे में पढ़ें।
It worked. I took pleasures for 30 in half an hour. I took pledges for 30 sets of Srimad Bhagavatam. Yes, I did. It worked.
और ये कार्य किया आधे घंटे के अंदर महाराज कह रहे हैं 30 भागवतम सेट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया।
I think I'm going to pass it on to Vaisheshikakas, Prabhu, the world's foremost champion of selling sets of Bhagavatams. I think I should pass this on to him. But extraordinary, guys. That's pretty extraordinary to sell, you know, 30 sets in half an hour.
तो महाराज से कह रहे हैं जो वैशेषिका प्रभु हैं जो बहुत ही राजा माने जाते हैं पुस्तक वितरण के तो उनके साथ शेयर करेंगे।
So this is the description of the beautiful women in Indraprastha.
तो ये वर्णन है वहाँ की सुंदर स्त्रियों का।
So Vishwanatha Chakravarti, who is such a great acharya, he's describing. So what are the qualities of these Shama women, anyways? And he's going to explain.
तो जैसा कि यह श्लोक में आया है कि उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। तो श्यामा के गुण क्या है ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तात्पर्य में बता रहे हैं।
He gives a hint of the quality of the Shama woman.
तो श्यामा स्त्री के गुणों का संकेत वो दे रहे हैं।
A woman whose body is very warm during the winter.
जिस स्त्री का शरीर शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे
and cool during the summer.
और ग्रीष्म में शीतल
And who generally has very firm breasts.
और जिसके स्तन सामान्यतः अत्यंत
सुगठित हो। Don't blame me. This is what Vishnu Chakravarti Thakur says. Generally has very firm breasts. So that kind of woman is called Shama.
वे श्यामा कहलाती है।
So the breezes blowing in the streets of the city or the fragrance of the flowers falling from the hair of the women of the demigods. I mean, you know, That's a heavenly planet, you know. This is what if you want to go there, you can go there. But you know, all your god brothers and friends, and you know, they're going to go back to Goloka Vrindavan by Prabhupada's mercy. But if those of you who want these things, you can go there.
उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाले मंद समीर देवताओं की स्त्रियां के बालों से झर रही फूलों की सुगंधि से युक्त था।
Apsaras passed on the streets, which were covered with the white, fragrant smoke of aguru incense emanating from the windows with golden filigree. So Apsaras means these heavenly maidens again. I mean, you know, there's just no limit to the numbers of maidens of very, very sexy, very beautiful, heavenly dancing girls up there.
Apsarai, jin sadkon se hokar guzarti thi. वहां अगुरु का श्वेत सुगंधित धुआं छाया रहता था जो सुनहरी तारकशी वाली खिड़कियों से निकल रहा था।
So windows with golden filigree. Filigree means insect.
तारकशी, सुनहरी तारकशी वाली खिड़कियां।
Carved and then inset. In this case, in the carved designs, we see in India like that, you know. In the West, you don't see the old-fashioned. Now you use modern India. You don't see modern India. You see just cheapest, junkiest buildings you can imagine. You know, with no design at all. But formerly, this kind of artwork was the pride of India.
तो इसको तारकशी वाली खिड़कियाँ भारत में भी देखते हैं पाश्चात्य देश में भी ऐसी खिड़कियाँ जिन पे तारकशी हुई हो।
So filigree, that means these inset designs, carved designs filled with gold.
वो तारकशी सुनहरी थी, सोने से भरी हुई थी।
So we'll stop there next time we can start with text number 20.
श्लोक संख्या 20 पर अगली क्लास में होगा।
Kanatana Shima Bhagavatam Ki Jai Jagaguru Sri Gopal Ki Jai Shri Shri Radhakrishnan Krishna Balaram Jagannath Bali Sambhaja Ki Jai Nitya Gaur Premanandi Hari Hari Bolo
Nisolas Bhakti Madhuri Gaur Swami Maharaj Ki Jai Nisolas Bhakti Madhuri Gaur Swami Maharaj Prakatya Divas Ki Jai